ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार श्लोक क्रमांक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यह श्लोक पिछले श्लोक से संबंधित है, जिसमें भगवान ने बताया था कि बताते हैं भगवान बता रहे हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भोगी लोग हैं, जो लोग मान रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना, ऐसा नहीं है कि केवल इंद्रियां उनको ही अपना दास बनाती हैं। जो लोग विपश्चित हैं, विपश्चित का मतलब जो लोग समझते हैं कि आत्मा और शरीर में अंतर क्या है और इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को भी उनकी इंद्रियां मन के द्वारा खींच के ले जाती हैं। इतनी शक्तिशाली, तो आप कहेंगे कि क्या उनकी बुद्धि काम नहीं करती है? नहीं, बुद्धि काम करती है, लेकिन बुद्धि को वो जीत लेती है, इतना प्रबल होती है। तो यहां इस श्लोक में बता रहे हैं कि इसलिए जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया हुआ है, यानी कि अपनी इंद्रियों को भोगों में नहीं जाने दे रहा है, कृष्ण विषयक वस्तुओं से अलग नहीं जाने दे रहा है और लगातार कृष्ण में लगाया हुआ है, ऐसे व्यक्ति का हमें समझना चाहिए कि जो उसकी प्रज्ञा है, उसकी बुद्धि है, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। इस संबंध में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषां जातमयी न करुणा ना तृपा नोपशान्ति। सांप्रतम लब्ध बुद्धि, आगे श्लोक में बीच वाला थोड़ा भूल रहा हूं, सांप्रतम लब्ध बुद्धि त्वाम शरणम आयतम माम नियम स्वात्म दासति दासे, ऐसे करके श्लोक है। अर्थ इसका यह है कि काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य ने ही भगवान मुझको बहुत मचाया है, और ऐसा नहीं कि वो शांत हो गए, लेकिन अब मेरी बुद्धि मुझको प्राप्त हो गई है, सांप्रतम लब्ध बुद्धि। और क्या बुद्धि मिल गई है? भगवान, मैं आपका नित्य दास हूं और इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, कृपया मुझे आप अपनी सेवा में लीजिए। ये बहुत ही गहरा श्लोक है, क्योंकि हम सुन लेते हैं लेकिन इस प्रकार की बुद्धि तुरंत जागृत नहीं होती। हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण से धीरे धीरे करके चेतना जागृत होती है कि हम कृष्ण के हैं और एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, और इसके द्वारा ही हमारी इंद्रियां संयमित हो सकती हैं। आंखें बंद करके, कान बंद करके हम इस जगत में जीवित नहीं रह सकते, अपनी इंद्रियों के द्वारा हमें कुछ ना कुछ कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन जो प्रज्ञावान, जिसकी प्रज्ञा भगवान में स्थित है, वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग केवल भगवान के लिए करता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। क्या आप लोग श्लोक समझ अर्थ समझ पा रहे हैं? मतलब अपने इंद्रियों को भोगों से विरक्त रखते हैं और साथ साथ अपनी इंद्रियों को लगातार, ये लगातार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कुछ समय तो भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन लगातार हर क्षण करते रहने के लिए हमारी चेतना बिल्कुल कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। तात्पर्य को देखेंगे, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। क्यों ऐसा है? हम सब लोग आनंदमय हैं, आनंद की खोज में हैं, और इस जगत में हमें आनंद कैसे मिलता है, जैसे मेरी आंख इस समय कुछ वस्तु को कुछ दृश्य को देख रही है, तो मेरी आंख बाह्य दृश्यों से संपर्क में आ रही है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? साथ ही साथ मेरी जो नेत्र है, जो इंद्रिय है, ये मेरे मन से भी जुड़े हुए हैं अंदर से, और बाहर के दृश्य को वो मन तक ले जाने का कार्य कर। तो अगर मेरा मन बहिर्मुख है, मैं बाहर के दृश्यों में सुख ढूंढ रहा हूं, तो कभी भी मैं इंद्रियों को मना नहीं कर सकता। तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभु जी, हम लोग भी तो जब कीर्तन करते हैं, या हम कथा सुनते हैं, या हम भगवान का दर्शन करते हैं, तब भी तो हम बाह्य दृश्यों को ही देख रहे हैं, ये अंतर कैसे हो गया? जब कोई दृश्य कृष्ण संबंधित होता है तो हमारे मन को बहिर्मुख करने की बजाय वो अंतर्मुखी करता है, भले ही वो दृश्य या वो शब्द या वो रस, रस का मतलब कोई स्वाद की चीज है, वो बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो चित्त की रुग्णता है, जो चित्त का भोग के भावना है, उसको ठीक करते हैं। इसलिए हम इसको भोग नहीं कहते हैं, इसको योग कहते हैं। जैसे भगवान का प्रसाद ग्रहण करना योग है, लेकिन केवल अगर हम खाना खाते हैं तो ये भोग है। भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना योग है, लेकिन जगत के सुंदर रूपों का दर्शन करना ये भोग है। देखिए, दोनों बाहर ही रहे हैं, इन कृष्ण विषयक होने के कारण मेरे चित्त को वो कृष्णोन्मुखी करता है। आज लग रहा है मैं बहुत कठिन हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन शायद इसके बिना कैसे मैं समझाऊँ। सिद्धांत इस प्रकार के हैं, जब नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, फिर मैं रुकूंगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। सवय मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराचित सत्कथोधये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तदवृत्य गात्रस्पर्शयंग संगमं ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्यारसनाम तदर्पिते पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यतोत्थम श्लोक जनाश्रया रति। बहुत सुंदर श्लोक हैं, इनको समझने का थोड़ा प्रयास करें। एक महाराज अम्बरीश थे, बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। भगवान यहां एक शब्द यूज कर रहे हैं, मत परह। एक शब्द आपने प्रायः सुना होगा कि ये फलाने व्यक्ति बड़े तत्पर हैं। तत्पर का मतलब लगे रहते हैं उस कार्य में। उसी प्रकार से मत पर मतलब हो गया कृष्ण की सेवा में लगातार लगे रहने वाला व्यक्ति। तो यही बात भगवान बता रहे हैं, युक्त, जो व्यक्ति युक्त है और मत पर है। मत पर का अर्थ क्या है? कृष्ण की सेवा में लगातार लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है। अब उदाहरण क्या दे रहे हैं जरा समझ लीजिए। एक बार महाराज अम्बरीश आज के दिन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एकादशी का उपवास कर रहे थे और द्वादशी को उसका पारण करना था, तो आज द्वादशी है इसलिए बोल रहा हूँ। इसी प्रकार की द्वादशी थी और उस समय दुर्वासा मुनि उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, और सब लोग जानते हैं कि द्वादशी में एक निश्चित समय होता है जिसके बीच में हमें अपना पारण कर लेना चाहिए, और अम्बरीश महाराज हमारी तरह खा पी करके एकादशी नहीं करते थे, है ना, पूड़ी खा लें और एकादशी की पूड़ी खा लें, एकादशी फीस्ट खा लें, वो निर्जल उपवास कर रहे थे। तो दुर्वासा मुनि आते हैं और कहते हैं हमारे प्रसादन की व्यवस्था कीजिए। तो अच्छी बात है, ब्राह्मण आए हैं, राजा को कटना चाहिए और उन्हें करने की तैयारी भी किया। दुर्वासा मुनि जा करके, और जहाँ तक मैं सुनता हूँ उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था, उस टाइम बहुत ठंडा होता है, तो जा करके यमुना जी में बैठ गए और बैठे रहे, खूब गायत्री कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, और जानते थे कि वो पारण का समय बीत रहा है। और इस इधर अम्बरीश महाराज सोच रहे थे कि अगर मैं कुछ ग्रहण कर लेता हूँ तो ये ब्राह्मण के प्रति अपराध होगा, और अगर ग्रहण नहीं करता हूँ तो फिर एकादशी का व्रत टूट जाएगा। और वो एकादशी का व्रत केवल अपने लिए ही नहीं कर रहे थे, बल्कि समाज में जितने भी उनकी प्रजा थी उनके कल्याण के लिए कर रहे थे। राजा जो भी तप करता है, भक्ति करता है, उसका लाभ प्रजा को मिलता है। तो उनने अपने ब्राह्मणों से पूछा तो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, कोई कह रहा था खा लो, कोई कहता नहीं खाओ। तो फिर खुद उन्होंने निश्चय किया शास्त्र का उद्धरण देख करके कि जल पीना ये व्रत को तोड़ना है भी है और नहीं भी है, इसलिए उन्होंने भगवान का जो प्रसादम जल होता है चरणामृत उसको ग्रहण कर दिया दो बूंद, और फिर शांति से खड़े हो गए। आप देख सकते हैं एक क्वालिटी की, जब हम निर्जल उपवास करते हैं, जब भी किया हो हमने, या माता जी लोग कभी करवा चौथ करती हैं या कोई भी, तो कितना आग्रह होता है पानी पीने का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उनकी इंद्रियां पूरी तरह से संयमित थी, भगवान की भक्ति में दृढ़ रहने के कारण कुछ भी विचलित नहीं हुए। उनकी विचलना इस बात से नहीं थी कि मुझे प्यास लग रही है इससे दिक्कत हो रही है, ध्यान दीजिएगा, उनको खाली ये दिक्कत हो रही थी कि ब्राह्मण का अपराध नहीं हो और साथ साथ मेरा एकादशी का व्रत ना टूटे, भगवान इससे अप्रसन्न ना हो। पूरी तरह से उनकी इंद्रियां सहमत थी। दुर्वासा मुनि को मालूम चल जाता है, आ जाते हैं, और उसके बाद बहुत क्रोध करते हैं, और क्रोध में अपने बाल तोड़ करके कृत्य उत्पन्न करते हैं अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो आप देखिए कैसे दुर्वासा मुनि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा पानी पी लिया उसको जान से मारने के लिए उन्हें कृत्य उत्पन्न कर दिया, जरा से भी अपने इंद्रियों के वेग को नहीं सहन कर पाए। यही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा योगी भी क्यों ना हो, ऐसे दुर्वासा मुनि बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन बहुत अधिक तपस्या करने से अहंकार और हृदय की कठोरता बहुत बहुत संभावना है किस प्रकार से हृदय में आ जाए। अहंकार आना तो बहुत सामान्य सी बात है। तो इसके विपरीत अम्बरीश महाराज जब कृत्य उत्पन्न होती है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उनको उस कृत्य में भी भगवान का ही कह सकते हैं प्रबंधन अरेंजमेंट लग रहा था कि भगवान की योजना है कुछ, अगर भगवान चाहते हैं कि इस कृत्य के द्वारा मैं नष्ट हो जाऊं तो नष्ट हो जाऊंगा, इतने वो निरासक्त थे, उनकी आसक्ति केवल भगवान में थी और पूर्ण विश्वास भी था भगवान जो मेरे लिए करना चाहते हैं वो सही है, मैं इस बात को बोल रहा हूँ लेकिन इसका साक्षात्कार मेरे को नहीं है। अगर दुर्वासा मुनि मेरे पे कृत्य उत्पन्न करते तो शायद मैं भाग जाता कहीं। तो हम चर्चा कर रहे हैं इनके गुणों का, गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे, लेकिन चर्चा करने मात्र से हम भक्तों की गुणों की चर्चा करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। लेकिन ये हुआ कैसे इसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में व्यस्त रखते थे, भगवान को अपने मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला के स्मरण में लगाते थे, ये दिखाया गया इसमें, अपनी वाणी को भगवान के गुणों के वर्णन में लगाते थे, अपने हाथ से भगवान के मंदिर की सफाई करते थे क्योंकि वो राजा थे फिर भी समय निकालते थे, अपने कानों को भगवान की कथा के बारे से सुनने में लगाते थे, अपनी आंखों को मुकुंद लिंग, लिंग का अर्थ होता है भगवान का रूप, जैसे यहाँ पे भगवान का फोटो है, ये भगवान का विग्रह है, उसको देखने में लगाते थे, और अपनी त्वचा को भक्तों का स्पर्श करने में लगाते थे। एक्चुअली ये बड़ी अद्भुत बात है, आप लोगों को शायद ऐसा अनुभव भी होगा कि कुछ लोगों के आप पास जाकर बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोगों के आप पास जाकर के बैठे हैं तो आपको लगता है इनसे बात भी नहीं करना चाहिए। या थोड़ा सा भी बात करेंगे आपको लगेगा ये कुछ। जो लोग बहुत दुरुक्ति बोलते हैं यानी बहुत बुरे वचन बोलते हैं, गलत लोगों का संग करते हैं, उनके इर्द गिर्द एक नेगेटिव एनर्जी का घेरा होता है। जैसे जो लोग शराबी बहुत होते हैं, गैर सलत आदतें होती हैं, उस प्रकार का घेरा हो जाता है। और भक्त लोग क्योंकि जप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके इर्द गिर्द आने से ही हमारी पवित्रता हो जाती है। इसीलिए तुलसी जी के पास बैठ के जप करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं तुलसी जी को सामने रख करके जप करते थे। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुलसी जी का जो आसपास में सभी लोग जो तुलसी जी को देख रहे हैं, सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। इसको तुरंत अब भले अनुभव ना करें, लेकिन शास्त्रों का इसका वर्णन है, धीरे धीरे हम इसका अनुभव कर पाते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने त्वचा को उन्हें भक्तों का स्पर्श करने में करते थे या उनके चरण स्पर्श करते थे। नाक से भगवान को जो तुलसी अर्पित होती थी वो सूंघते थे, या फिर भगवान को फूल अर्पित किए, जैसे ये फूल भगवान को अर्पित किए गए तो लगातार मेरे त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं और मेरे नासिका में भी इसकी गंध जा रही है, इससे भी हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और जो भगवान को चरणों में क्षमा कीजिएगा, घ्राणम तत् पाद सरोज स्वर्ग, मतलब जो भगवान के चरणों में फूल अर्पित किए जाते थे उनको सूंघते थे, और जीभ से रसना से भगवान को जो तुलसी अर्पित की जाती थी, भगवान को नैवेद्य जो प्रसादम अर्पित किया जाता था, भोग अर्पित किया जाता था, उसको प्रसाद रूप में वो ग्रहण करते थे। पैर से क्या करते थे, भगवान के क्षेत्र, जैसे कि भगवान का धाम है, जैसे ये अभी जो मैं कथा चल रही है ये भी मधुबन में, मधुबन की बात है, मथुरा की बात है, मथुरा के राजा ही थे एक्चुअली, तो मथुरा में रहते थे और भगवान के धामों की परिक्रमा करते थे। आप लोग का आश्चर्य होगा, जो जगन्नाथपुरी में एक बार भी प्रवेश कर लेता है, उसके पांव उस भूमि को टच कर लेते हैं, तो फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। मैं पढ़ रहा था बृहद भागवतामृत में, वहां पे जो गधे हैं उनको भी जो देवता लोग हैं वो चतुर्भुज रूप में देखते हैं, और भगवान उस भक्त को बोलते हैं कि मथुरा उससे भी अधिक प्रिय है। तब देख रहे ना कि हमारा दिमाग से बाहर चला जाएगा मथुरा का महिमा या फिर जगन्नाथपुरी की महिमा। जब प्रलय होती है तब भी मथुरा नष्ट नहीं होती, वृंदावन जो मथुरा है ये गोलोक धाम से भिन्न है, ये वापस गोलोक धाम में समाहित हो जाता है, लेकिन प्रलय से बाधित नहीं होता, इतना शक्तिशाली। लेकिन जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हमें लगेगा कि अरे क्या है, तो गांव है या छोटा सा शहर है, उससे दिख क्या है। और अपने सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगाते थे। तो यहाँ पे आप आके कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो प्रणाम करते ही हैं, और घर में भी भगवान की फोटो को रख करके रोज प्रणाम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मत पर हो जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे। और बोल रहे हैं कामम च दास्य न तु काम कामेय, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती है, मैं ये करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मुझे ये करना है, और प्रायः एक भौतिक व्यक्ति, भौतिकता से प्रभावित व्यक्ति के लिए उसका प्रयोजन क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा, होता है ना। जैसे मान लीजिए बोला जाए कि अगर आप सुबह 4 बजे दुकान खोलेंगे तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। जिनों की यहाँ पे दुकानें हैं, कौन व्यक्ति है जो नहीं खोलेगा, सब लोग खोलेंगे। लेकिन बोला जाए कि भाई अगर कल जो है यहाँ पे मंगल आरती होगी, स्नान करके आना है, तो फिर कितने लोग आएंगे, अरे अब हाँ बच्चों का ध्यान रखना है, ये है वो है, कितनी अद्भुत बात है ना। अभी मैं एकदम अभी आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा, अभी मैं सोच रहा हूँ, और आप इस बात को जो बोलूंगा तो कोई माता जी जिसका जो देखी होंगी इस बात को कभी नकार नहीं सकती। जो माताएं बोलती हैं कि बच्चों की वजह से हम भजन नहीं कर पाते, तो उन माताओं जी से सोचिए जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, 2-2.5 साल के बच्चों को प्ले स्कूल में डाल के चली जाती हैं ताकि वो नौकरी कर सके। 2.5 साल का बच्चा जिसको माँ का प्रेम मिलना चाहिए उसको टीचर का प्रेम मिलता है, और वो प्रेम कैसा हो सकता है पता नहीं है ना, 2.5-3 साल में बच्चों को डाल देते। आज तक मैंने कभी सोचा नहीं, बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। आपको नौकरी करनी है उसके लिए तो आप अपने बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में फेंक के चले जाते हैं। मैं शब्द फेंक के ही बोलूँगा क्योंकि माँ का प्रेम देने के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन भजन करने के लिए बोलते हैं मेरे बच्चे हैं, ये है वो है, मैं जब कैसे करूँ। तो हम देख सकते हैं कि हमारी कार्य करने की प्रवृत्ति काम क्या है, काम काम यह है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम किसी का भी त्याग कर सकते हैं, बच्चों तक का भी। बहुत से लड़के बोलते हैं मेरी माँ नहीं चाहती है कि मैं भक्ति करूं, इससे मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब वो लोग बाहर नौकरी करने के लिए चले जाते हैं और माँ बोलती है मैं बहुत बीमार हूं, तो ऐसे लड़के देखने के लिए भी नहीं आते। तो हम ये देख रहे हैं कि काम कामिया में तो बहुत उत्साहित हैं हम लोग, हमारी इंद्रिय तृप्ति होगी तो उसमें बहुत उत्साह से हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन जहाँ भगवान की भक्ति की बात होगी उसमें हमारा उत्साह एकदम फ्रेश हो जाता है। और उसका कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हमने भगवान की भक्ति के बारे में ठीक प्रकार से सुना नहीं। जब हम ठीक से सुनते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, ना तो काम कामेय, मतलब अपने काम इच्छाओं के लिए अपने इंद्रियों के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, और भगवत प्रीति के लिए वो लगातार प्रयासरत रहते। और इससे क्या हो गए थे, भगवान में उनकी यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। अगर हम भगवान में प्रीति चाहते हैं तो हमें अमरीश महाराज के पदचिन्हों का चलने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि अपने इंद्रियों को सीमित रखें और भगवान के लिए अधिक से अधिक लगाएं। और आप देखेंगे कि शुरुआत में भले ही ये कड़वा लगे, बल्कि शुरुआत में भले समझ में भी ना आए, मेरी बात शायद कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, किसकी सेवा करनी, कहाँ सेवा करें, लेकिन जब हम सेवा करने लगते हैं तब हमें समझ में आने लगता है कि ये कृष्ण की सेवा है। और भगवान भी हृदय में रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं हमको और प्रेरणा देने के लिए कि तुम और मेरी ये इस प्रकार से सेवा करो। तो उसको आप कहेंगे अरे भाई जब इसकी भगवान में प्रीति है ही नहीं, वो क्यों करने लगेगा भगवान की सेवा इस प्रकार से। तो अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था, वस्तुओं में हमारा आकर्षण नहीं होता है, अगर भगवत कृपा से हमको ऐसे लोगों का संग मिलने लग जाए जिनका भगवान में इस प्रकार का आकर्षण है, तो हमारी भी ऐसी आकर्षण, हमारी भी ऐसी इच्छाएँ होने लग जाए। आप जब भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे गुण हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम करते थे तो हम लोग 3 लाख कितने दिन में करते हैं, हम लोग को 1 लाख करने में जो उसमें 4 दिन लगते हैं, यानी 12 दिन में 3 लाख करते हैं। तो हमारा वजन उनसे 12 गुना कम है, केवल नंबर वाइज, क्वालिटी वाइज तो छोड़ ही दीजिए, गुणवत्ता तो क्या बोला जा सकता। लेकिन जब हम बार बार सुनते हैं तो फिर हम उनके चरित्र से प्रभावित होने लगते हैं, कितने महान भक्त हैं, कब वो दिन आएगा कि हम भी इस प्रकार से भगवान के नाम के प्रति आसक्त हो पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। इसीलिए शास्त्रों में भगवान के भक्तों का चरित्र पढ़ने से हमको बहुत लाभ होता है, हम उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर के वैसे ही बनने की इच्छा करने लगते हैं, और फिर ऐसी इच्छा देख करके भगवान हमको प्रेरणा देते हैं तुम इस प्रकार से मेरी सेवा करो। धीरे 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 सेवा करते करते तो भगवान इस प्रकार की रति होती है। तो अगर हम भगवान में प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो सूत्र यही मिल रहा है, और सूत्र ये है कि अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए लगातार भगवान की सेवा में नियोजित रखना। तो मैं इस तात्पर्य को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस तात्पर्य को मैंने समझाने का प्रयास कर दिया है, ऑलरेडी समझा दिया, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है, कोई मत पर किस तरह हो सकता है इसका वर्णन महाराज अमरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेना सर्वेंद्र विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, असली योग का यही उद्देश्य है। थोड़ा सा हम समझाएंगे। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम भगवान पे ध्यान करते हैं, उनके नाम के ऊपर, उनके रूप के ऊपर, उनके गुणों के ऊपर, नाम के ऊपर ध्यान करने का मतलब है हम बोलते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। रूप के ऊपर ध्यान करने का मतलब है भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं। यहाँ ये सुविधा नहीं है कि भगवान को अलग अलग ड्रेस में हम रोज देख सकते हैं, वैसे वो भी सुविधा है, आजकल नेट के माध्यम से आप मंगल आरती का दर्शन रोज प्राप्त कर सकते हैं, तो भगवान ने वो भी सुविधा दे रखी है। और उनके गुणों का ध्यान करने का क्या अर्थ है, कृष्णा बुक सबके पास होगी और नहीं तो यहाँ से पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं कृष्णा बुक यहाँ पे तो हम ला सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो भगवद्गीता को पढ़ेंगे तो भगवान की वाणी का चिंतन करेंगे। तो जब हम ये कर रहे हैं तो इससे भगवान हमारे हृदय में अग्नि रूप में प्रकट होकर सब कुछ प्रज्वलित कर दे, मतलब सब कुछ खत्म कर देंगे, मतलब हमारे हृदय की सारी गंदगी को साफ कर देंगे। इससे पहले भी मैंने समझाया है कि जैसे ये हारमोनियम लकड़ी से बना है, लकड़ी में अग्नि होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन एक पर्टिकुलर साधन, एक पर्टिकुलर तरीका करने से, माचिस से आप पेट्रोल फेंक छिड़कें और माचिस से आग लगाएं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से भक्ति की क्रिया के द्वारा भगवान सब जगह विद्यमान है और हमारे हृदय में भी विद्यमान है, लेकिन जब हम भक्ति का साधन करते हैं तो भगवान अपने तेज को प्रकाशित करके हमारे हृदय के अज्ञान को नष्ट करते हैं। भक्ति इतनी प्रबल है कि अगर हमारे हृदय में जिज्ञासा ना भी हो भगवान के जानने की, अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप हृदय में सारा ज्ञान उदित होने लगता है, इतनी प्रबल है। और आप जिज्ञासु हों तो फिर तो कहना ही क्या, कोई जिज्ञासा नहीं है, बस हरे कृष्णा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक दिन आप देखेंगे कि अकस्मात आपको बहुत सारे साक्षात्कार होने लगे, और भक्तों को जो लोग जब करते हैं उनको अनुभव भी हो रहा होगा कि जैसे आप लोग पहले सोचते थे उसमें, उस सोच में और आज की सोच में बहुत अंतर है। भले ही आपको ये ना लगे कि आज कुछ हुआ है, तो कल कुछ हुआ है, तो परसों कुछ हुआ है, लेकिन एक्चुअली हर क्षण जब आप नाम उच्चारण कर रहे हैं कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ आपके मन में परिवर्तन होने लगा है। भगवान उससे प्रसन्न होकर के हमारे हृदय के ज्ञान को अपने आप ही नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रात भर जगा रह सकता है सूर्य को देखने के लिए, और बाकी लोग सोते रह सकते हैं, लेकिन अगर सूर्य उगने के समय उठ जाए तो उनको दिख जाएगा कि हाँ भाई सूर्य उग गया है, ये वस्तु ऐसी है, वैसी ऐसी है। तो यानी बस उसको मरना नहीं है, अगर सूर्य उदय होने से पहले मर जाएगा तो नहीं देख पाएगा। यानी कि भक्ति करता रहे, अगर बहुत जिज्ञासु ना भी हो तो भी भक्ति के प्रभाव से उसके हृदय का ज्ञान नष्ट हो जाएगा और उसके हृदय में ज्ञान उदित हो जाएगा। इस बात को भगवान बोलते हैं दशम अध्याय में कि जो लगातार मेरी सेवा में लगे हुए हैं, तेषां सत्ययुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति। जो लगातार, जैसे आपने यहाँ देखा था मत्पर, जो लगातार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन किससे लगे रहते हैं, प्रीति से, भगवान की से प्रेम है उनका, प्रीति से लगे रहते हैं, कोई पैसे के लिए नहीं या कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इससे हमें एक बहुत सुंदर सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, और वो सेंटेंस या वाक्य ये है कि भगवान का भक्त कभी भी अज्ञान में नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अज्ञान को नष्ट करने की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं, जब हम लगातार प्रीति से भजन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर ये योग्यता नहीं है, इसलिए हमें एक ऐसे गुरु से दीक्षा लेकर के उनके मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए जो इस प्रकार से प्रीति युक्त हो, जो हमें मार्गदर्शन कर सके कि हम कैसे भक्ति आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों प्रकार के गुरुओं की आवश्यकता होती है, जो हमें बता सके कि हम कैसे नियोजित हो सकें। हर व्यक्ति के लिए सेवा का जो प्रारूप है वो अलग अलग होगा, सब लोग एक ही प्रकार की सेवा नहीं कर सकते। जैसे मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, आप कहेंगे अरे तुम तो निकम्मी हो, कुछ नहीं कर सकती, पेड़ से बोला थोड़ा सा काम करने के लिए फल तोड़ के लाओ, तुम नहीं तोड़ सकते। और बंदर को बोले तुम पानी में गोता लगा करके कुछ पन्ना लेके आओ, अरे यार तू तो बंदर के बंदर ही रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, सुबह से बोल रहा हूँ। यानी कि हर व्यक्ति की योग्यता अलग है और उसके अनुसार उसकी सेवा का प्रारूप समझते हैं, उसकी रूपरेखा अलग है, लेकिन भावना के स्तर पे कहीं कोई कमी नहीं आ रही। हर व्यक्ति अगर वो चाहे तो भक्ति भावना से भगवान की सेवा कर सकता है और भगवान उससे प्रसन्न हो जाते। तो यहाँ पे हमने आज क्या सीखा है, हाँ एक और चीज सीखनी है। कुछ लोग लाल बत्ती के ऊपर ध्यान करते हैं, मैं नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, समय लोग समझ रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम लाल बत्ती पे ध्यान करेंगे। तो लाल बत्ती पे ध्यान करने से हृदय का अज्ञान नष्ट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद योग सूत्र से भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसमें भी भगवान विष्णु के ऊपर ही ध्यान करने के लिए बोला जाता है। तो ये जो लाल बत्ती से ध्यान करना है, जो भी इस प्रकार के जो ध्यान होता है, इससे कोई लाभ नहीं होगा और हृदय का ज्ञान भी नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो शास्त्र ऐसा वर्णित नहीं कर रहे। तो हमें अपने ध्यान को भगवान में लगाना है, और ध्यान को भगवान में लगाने का अर्थ ये नहीं है कि आप खाली पी के बैठे रहिए, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप सोचते रहिए, कि प्राय सोचने के बजाय हम सोने लग जाएंगे, उसकी बजाय हम प्रैक्टिकल सेवा करें। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, नाम जब भी करें भगवान के मंदिर का, अपने घर में मंदिर स्थापना करें या ऑल्टर रखें, उसको रूप की सफाई करें तो मंदिर की सफाई होती है, भगवान के लिए भोग बनाएं, भगवान को प्रणाम करें, इस प्रकार से विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हम अपने मन को भगवान में नियोजित करेंगे तो बड़ी आसानी से भगवान में प्रीति होगी। और जब प्रीति होने लगेगी तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने में और इंद्रियों को सेवन करने में कोई मुश्किल नहीं है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता, कोई प्रश्न है किसी का?